आप हैं SBS हिंदी के साथ।
वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलिया में लगभग 8.5 मिलियन पर्यटक आए थे और इस गर्मियों के मौसम में अब और अधिक पर्यटक यहां आएंगे। अधिकारियों ने इन पर्यटकों से यात्रा के जोखिमों के बारे में जागरूक होने का आग्रह किया है। वर्ष 2019 में कुछ अंतर्राष्ट्रीय यात्री अपने घर वापस नहीं जा सके, जबकि कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया के वातावरण में छिपे कुछ खतरों से बस बाल बाल ही बच गए। तो आइए डालते हैं एक नजर इसी पर। जब 20 लोगों का एक समूह अक्टूबर में क्वींसलैंड में स्नॉकलिंग के लिए गया था, तब दो ब्रिटिश व्यक्तियों ने पर्यटन के एक सबसे बुरे सपने को लगभग सच होते हुए देखा, और वो सपना था एक शार्क हमला। स्वीडन के एम्बुलेंस कार्यकर्ता बिली लुडविक्सन और एमा एंडरसन उसी नाव पर सवार थे और उन्होंने ही उस आपातकाल स्थिति को संभाला था। वो बताते हैं,
The bleeding was severe, life-threatening at first, but we managed to stop the bleeding pretty fast, actually, like in a couple of minutes, I don't know, 5 minutes.
We managed to stop. Yeah, maybe we started with the man who got on board first, yeah. And did the same thing with his leg, and yeah. It didn't look so bad.
No.
So we just let him go for the moment, because we knew that the other one lost his foot,
yeah.
And we started to act more with that.
इस जोड़ी का कहना है कि उन्हें पानी में जाने के खतरों के बारे में पता था।
It's different when it's a shark attack and we have been in the water at the same time. It's more like personal like that. But injury-wise, we have seen worse. Yeah.
इससे पहले इसी वर्ष एक महिला और एक बच्चा घायल हो गए थे और एक अन्य व्यक्ति को भी हैमिल्टन आइलैंड के पास शार्क द्वारा काटे जाने के बाद अस्पताल में ले जाया गया था। स्नॉर्कलिंग साइट पर निर्णय लेने से पहले जोखिम के आंकलन की योजना बनाने के बारे में टूरिज्म विटसंडे राज्य सरकार से मिला। विटसंडे में बे पेट्रोल्स को बढ़ाने की भी योजना है। चीफ एग्जीक्यूटिव टैश व्हीलर का कहना है कि इस क्षेत्र में हर साल लगभग 1 मिलियन पर्यटक आते हैं।
The Whitsundays is and always has been an adventure playground, and like anywhere you travel in the world, you need to take caution of your surroundings. And I would suggest that to anyone, whether they're travelling in our marine park or in a reef right around the world, it would be the same advice.
लेकिन ऑस्ट्रेलियन पानी में छुपे हुए अन्य अदृश्य खतरे जैसे कि रिप्स, अंडरवाटर और मजबूत करंट, ये सब हैं। विक्टोरिया की पुलिस मंत्री लिसा नेविल गर्मियों के लिए आगे चेतावनी जारी कर रही हैं।
What we know last year is that we had a record number of deaths over the summer period, 17 above the sort of average, and we need and want to do something about that.
उधर न्यू साउथ वेल्स के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में पिछले 5 वर्षों में 129 लोग जो कि विदेशों में पैदा हुए थे उनकी पानी में डूब जाने से मृत्यु हुई, और डूबने वालों में सबसे अधिक मृत्यु लोग चीन, भारत और नेपाल के पैदा हुए हुए लोगों की थी। न्यू साउथ वेल्स रॉयल लाइफ सेविंग सर्विस ने एक सांस्कृतिक क्षमता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें शिक्षकों, पूल कर्मचारियों और लाइफ गार्ड को तैराकी में प्रशिक्षित किया जाता है। दिसंबर में विक्टोरियन सरकार ने घोषणा की कि वो प्रवासियों और पर्यटकों को पानी में सुरक्षित रखने के लिए एक डिज़ाइन किए गए कार्यक्रमों में 5 लाख से भी अधिक डॉलर का निवेश कर रही है। मंत्री नेविल ने कहा,
Yeah, so we certainly know that we have also high risks of particularly younger men from the cold backgrounds, people who have English as a second language in terms of our drowning statistics. So we have provided resources to Lifesaving Victoria to really be able to target that group.
अब बहुत से पर्यटक ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक और इसकी प्रकृति के अनुभव की तलाश में यहाँ ऑस्ट्रेलिया आते हैं, लेकिन ये यात्राएं बहुत बार उनके लिए गलत साबित हो जाती हैं। ब्रिटिश पर्यटक असलान किंग एक विक्टोरियन कैंपसाइट से गायब हो गए और पुलिस का मानना है कि उन्हें नवंबर में उनका शव मिला था। उधर जनवरी में एक जर्मन महिला मोनिका विलन नॉर्दर्न टेरिटरी से लापता हो गई। पुलिस का कहना है कि वो खो गई थी और उसने एक अन्य मोटर चालक से सवारी स्वीकार की, लेकिन पानी पीने से मना कर दिया। 62 वर्षीय इस महिला का शव उसके गायब होने की सूचना के एक सप्ताह के बाद एलिस स्प्रिंग के पूर्व में पाया गया था और पोर्ट मैक्वारी में मिली कुछ हड्डियां, और उन हड्डियों से इस बात की पुष्टि हुई कि ये एक फ्रांसीसी व्यक्ति के अवशेष हैं। ये व्यक्ति फरवरी में एक अंग्रेज के साथ लापता हो गया था। सुपरिटेंडेंट पॉल फियन का कहना है कि डीएनए को उस कार से मिलाया गया था जो उस बैकपैकर ने प्रयोग में लाई थी।
We believe from the DNA comparisons that it belongs to Erwin Ferrier, a 21-year-old backpacker who was travelling with his companion and went missing in the Shelley Beach area in February of this year.
नवंबर में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक और जर्मन पर्यटक का शव मिला जो वहां घूमते हुए अपनी पत्नी से अलग हो गया था। लेकिन एक अन्य मामले में विदेशी एंड्रियास कार्ल वेकर, जो उस राज्य से लापता हो गए थे, वो सुरक्षित और स्वस्थ तरह से पाए गए। और बेल्जियन बैकपैकर थियो हेज को न्यू साउथ वेल्स के तटीय शहर बायरन बे से गायब हुए अब 6 महीने से भी अधिक समय हो चुका है। उनके पिता लॉरेंट हेन्स ने जून में अपने बेटे को वापस पाने के लिए मदद के लिए एक भावात्मक गुहार की।
इट इज वीटल दैट इन्वेस्टिगेटर्स गेट एक्सेस टू थियोस व्हाट्सएप अकाउंट विदाउट डिले। एवरी मिनट काउंट्स। When I left Belgium, I promised Theo's little brother, Lucas, that I would bring his brother home. Please, help me keep my promise to him.
अब ये एक ऐसा वादा है जो थियो के पिता पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। SBS न्यूज के लिए स्टेफनी कॉर्सेटी की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया अनीता बरार ने।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।